نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اپنے عمل کی اصلاح کی نیت سے. ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم کسی کو رول ماڈل بنائیں. انسان کی یہ فطرت ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ماڈل ہو اور وہ اس کو فالو کرے، کیونکہ خود سے کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے. جب ہمارے سامنے کوئی عملی نمونہ ہوتا ہے تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے نبی تھے جن کی زندگی میں بہت سارے عروج اور زوال آئے، اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، لیکن وہ ہر حال میں ایک بیسٹ رول ماڈل دکھے ہم سب کو. تو اصل میں دیکھا جائے تو ہم یہ کہانی کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اپنی کردار سازی کے لیے. فائدہ کیا ہوگا؟ کل ہماری زندگی میں کیا ہونا ہے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. آج ہم ہونے والی چیز کو روک نہیں سکتے، ہاں لیکن ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہ سکتے ہیں. سب سوچئے، اللہ نہ کرے، لیکن جو کچھ یوسف کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ یا اس میں سے کچھ ایک چیز میرے ساتھ ہو جائے تو میرا اس پہ رد عمل کیا ہوگا؟ ہاؤ ول آئی ریئیکٹ؟ بس تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہو جائے گی یہ بات کہ آپ کتنے یعنی اچھے کام پہ اس وقت بیٹھی ہیں. ہم وہیں سے کہانی کو شروع کریں گے جہاں پہ پوری ہوئی تھی. یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلوایا، جیل سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے. وہ عورتیں جنہوں نے اپنی ایک دوست کے کہنے پہ آ کر یوسف علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج سب کے بیچ میں انہوں نے کنفیس کیا، اقرار کیا، قصور ہمارا تھا، یوسف بے گناہ ہے. اور ہم نے اس سے یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ جب آپ سچے ہوتے ہیں تو جلدی ہو یا دیر سے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی بے گناہی ثابت کرتے ہیں. اب معاملہ کلیئر ہو گیا. یوسف علیہ السلام کی بات چل رہی تھی کہ یہ میں نے سب کچھ کیوں کیا، یعنی عورتوں کو بلوانا، عزیز مصر کی بیوی کو بلوانا. صرف میں یہ دیکھنا چاہتا تھا اور لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، یعنی میں برا نہیں تھا. اسے کمل کی بات لکھیں، اپنی صفائی میں بولنا چاہیے. پیچھے ایک بات ہوئی تھی نا کہ چپ رہیں، اللہ خود ہی راستے کھولے گا، یہ حالات پہ منحصر ہوتا ہے. مطلب یہ کہ شکوے کے انداز میں نہیں، لیکن ریالٹی کے انداز میں ہمیں اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے. بس آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے، کورٹ پہنچ گیا، اللہ نہ کرے اس پہ جھوٹا الزام لگا اور اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا لوگوں نے، تو کیا چپ کر جائے گا صرف اس لیے کہ وہ آئی ایم سو ہمبل، کرٹسی میں میں بولتا ہی نہیں، اللہ کو تو پتہ نہیں. وہاں آپ کو عدالت میں بتانا پڑے گا، آپ کو اپنی طرف سے وکیل کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا حق لینا پڑے گا. ہاں، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ تو جس بات سے اب آج کا لیسن شروع ہوتا ہے یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے. آپ میں سے بھی کچھ بچیوں نے کل سوال کیا تھا کہ ہم اپنے نفس کو کیسے گناہوں سے بچائیں، یا ہم یوسف کی یہ کہانی پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہم خود کیسے اپنے آپ کو اس قابل کریں. اس کا جواب ہے آج پہلی ہی آیت میں، آئیے دیکھتے ہیں. بالکل ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ چلیے، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ کا قرآن سے تعلق محسوس ہو. فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ابرئ نفسی، اور نہیں میں بے گناہ سمجھتا اپنے نفس کو. کیوں؟ اب یہاں کوما لگا لیجئے، جہاں میں رکوں سمجھ لیجئے یہاں ایک کوما لگانا ہے، یعنی ایک جملہ پورا ہوا. وما ابرئ نفسی، اور میں بے گناہ نہیں سمجھتا اپنے نفس کو، یعنی میں اپنے نفس کو اس سے ایگزیمپٹ نہیں قرار دیتا. کیونکہ ان نفس الامارۃ بالسوئی، بے شک نفس تو بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائی کا. ये वजह है। यानी मैं अपने आप को बहुत पाक साफ नहीं करार देता, क्योंकि नफ्स की तो आदत है कि वो बंदे को बुरे काम पर ही माइल करता है। अच्छा, यहाँ भी कॉमा लगा लीजिए। फिर सबके साथ ऐसा होता है का नहीं? इल्ला मा रहम रब्बी, सिवाय उसके जिस पे रहम करे मेरा रब। और रब किस पे रहम करता है, क्यों करता है? क्योंकि इन रब्बी गफूर रहीम, बेशक मेरा रब खूब बख्शने वाला और मेहरबान है। पूरा एक स्ट्रेच में पढ़ेंगे तो क्या हुआ, मैं अपने नफ्स को बेगुनाह साबित नहीं करार देता, क्योंकि नफ्स तो बुराई पर ही उकसाता है। हाँ, मगर किसी पर मेरे रब की रहमत हो तो फिर वो बच जाएगा, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। बहुत सारी बातें इसमें। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने जो बात यहाँ कहलवाई, ये आपके मेरे जहन में उभरने वाले बहुत सारे सवालों का जवाब है। तो लिखिएगा, पहली चीज़ इस आयत से क्या है, नफ्स। व्हाट इज़ नफ्स? ठीक है, आप अक्सर एक जुमला बोलते हो, मेरा नाम, मेरे कपड़े, मैंने ये किया, मेरे अम्मी अबू, बोलते हैं ना। ये जो सब में मेरे है ना, मैं, मेरे, मुझे, ये नफ्स है। ठीक है, आई एम, आई एम क्या है? मैं, अना, इंग्लिश में कहते हैं अना। जो आपके मेरे अपने वजूद का एक एहसास है ना, ये नफ्स है। बस आप कहेंगे कि आप में से किसी का नाम शाजिया है, लोग क्या कहेंगे, शाजिया, शाजिया की अम्मी, शाजिया ने पढ़ा। लोगों को शाजिया के नाम के साथ क्या तसव्वुर में आएगा? उसका ज़ाहरी पोस्चर, शक्ल उसकी कैसी है, कद कैसा है, वो किस तरह चलती है। ठीक है ना, जैसे इस वक्त हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं। आपकी टीचर्स या आपके स्कूल में या कॉलेज में कोई रोल कॉल लगाता होगा, आपकी नाम बोलते हैं ना, तो आप उस वक्त क्या कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। वो कौन प्रेजेंट होता है? ज़ाहर तो आप होते हैं ना, लेकिन असल में इन फैक्ट वो आपका नफ्स है। नफ्स क्या चीज़ है जिसको आज आप एक एंगल से समझ सकते हैं, रूह, स्पिरिट। इसको भी थोड़ा सा समझिए। हमारे जिस्म के दो हिस्से हैं, एक वो जो दूसरों को दिखता और एक वो जो नहीं दिखता। जो दिख रहा है ना, ये मिट्टी के असर से पैदा हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम जो इस दुनिया में पहले इंसान थे, अल्लाह ताला ने उनको मिट्टी से पैदा किया था। वाकई मेड ऑफ क्ले, जैसे बच्चे अगर वो जो एक खेलते हैं, डोसा एक होता है, फिर इसी तरह मिट्टी से जो बर्तन बनाते हैं तो कुछ उससे फीचर्स बना लेते हैं ना। आदम अलैहिस्सलाम को तो डायरेक्ट अल्लाह ने मिट्टी से ही पैदा किया था, तभी तो हमारा रंग मिट्टी के रंग से मिलता हुआ। बाद में उनके बच्चों को भी मुख्तलिफ जगह से मिट्टी ली अल्लाह ने, बना दिया, तो आज हमारे कलर्स फ़र्क है, ये एक अलग बात हुई। हम सब आज कैसे पैदा होते हैं? मस आप देखें कि एक बच्चा दुनिया में आया, उसके बाद मोस्टली सबसे पहली खुराक बच्चे की दूध है। अब आप कहेंगे दूध तो मिट्टी से नहीं आता। नहीं, दूध आता है बिलफर्ज, माँ से दूध आता है, या गाय का दूध, बकरी का दूध। गाय क्या खाती है? चारा। चारा कहाँ से आता है? मिट्टी से आता है। आज आपने सुबह नाश्ते में अंडा खाया, रोटी खाई, रोटी बनी गंदम से, गंदम कहाँ से आई? मिट्टी से। अंडा कैसे मिट्टी से आ गया? अंडा किसने दिया? मुर्गी ने क्या खाया? जो भी मुर्गी खाती है ना, सब्जियाँ खाती है, वो भी जो गंद मन में से, वो भी मिट्टी में से ही है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जिस चीज़ से बड़े हो रहे हैं ना, जो हमारी नीड है, वो मिट्टी से ही पूरी होती है। ठीक है, ये वजूद जो है ना, ये ज़ाहिर है, लेकिन हमारे जिस्म का, हमारे वजूद का एक दूसरा हिस्सा है जो हमें नज़र नहीं आता, दूसरों को नहीं आता। जैसे शाजिया का लफ्ज़ बोला है ना, शाजिया की ज़ाहिर दिख रही है हमें, लेकिन शाजिया के अंदर जो उसके वजूद का सेकेंड हाफ है, वो नहीं नज़र आता। वो है नफ्स। चलिए आसानी के लिए, ये माइक मेरे सामने रखा हुआ है ना, ये किस तरह का, क्या रंग है इसका? ब्लैक है। ये इसके पीछे से क्या है, लंबी डंडी है ना, और ये आगे इसके फ्रंट पे क्या है, एक स्पंज, और इसका रिसीवर है जिसमें से ये मेरी आवाज़ ले रहा है। ये नीचे क्या है, ये सब कुछ किस रंग का है, ये क्या कर रहा है, ये स्टैंड इस माइक को होल्ड किए हुए, और ये माइक क्या कर रहा है, ये मेरी आवाज़ को कंप्यूटर में लेके जा रहा है, ठीक है। ये किस चीज़ से चल रहा है, बिजली से चल रहा है या सेल से चल रहा है। अगर मैं इसका यहाँ से बटन, ये जो मेरे पास है, इसको मैं बंद कर दूँ तो क्या होगा, मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इतनी बात समझ आ गई है, माइक अपनी जगह मौजूद रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन मेरी आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, हुआ क्या, माइक तो इधर ही है। एक बात समझ आ गई है, आगे चले। अगर ये ब्लैक कलर की बजाय रेड होता, और ये डंडी लंबी की बजाय छोटी होती, और ये ऊपर बड़ा गोल सा राउंड होता, हो सकता था ना, और अंदर से मैं बटन नहीं दबाती, तो क्या फिर मेरी आवाज़ आनी शुरू हो जाती, नहीं आएगी ना। मेरी आवाज़ के आने या ना आने से इसकी ज़ाहरी शेप का कोई ताल्लुक नहीं है, ये सहूलत के लिए उन्होंने बना दी, कैसे होल्ड होगा। ये और तरह के मेरे पास 10 किस्म के माइक होंगे, कोई बिल्कुल राउंड है, कोई कैसा है, किसी को आप ये वायर्स है, किसी को वायरलेस कर देंगे। असल चीज़ क्या है इस माइक की, इसके अंदर की वो बिजली जिसके ज़रिए ये मेरी बात आप तक पहुंचा रहा है, ये रूह है। अब समझे फिर दोबारा, मेरा आपका जो ये ज़ाहरी जिसम है ना, इज़ जस्ट लाइक अ रैपिंग पेपर, ये अल्लाह ने रैप किया हुआ। जैसे हम देखें इसको खोल लें अगर, तो इसमें बहुत सारी तारें होंगी ना, रेड होगी, ब्लैक होगी, और अक्सर तारें किस चीज़ की होती हैं, कॉपर की, कॉपर के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, वाई, ताकि आपस में ना जुड़ें, और हमारा हाथ लग दे तो वो हमें करंट ना पड़े। ये अगर सब कुछ ना ऊपर होता तो क्या मैं इसको अपने इधर इतना करीब रखती, डर था कि मेरा अपना ही हाथ लगेगा तो मुझे करंट लगेगा। बिल्कुल इसकी तरह हम इंसान भी असल में अंदर जो बिजली है ना, ये रूह है, और इसी को नफ्स कहते हैं। ये अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी तरफ से डाला था, कैसे डाला था हमें नहीं पता, गैब का मामला, युमिनूना बिलगैब, हमने सुना हमने मान लिया, ठीक है। असल चीज़ जो आपकी मेरी वर्थ बनाएगी वो रूह है। अगर ये माइक मैं ख़रीदने जाऊँ, वो मुझे इस माइक से भी खूबसूरत माइक दिखाए, उसके ऊपर इधर गोल्डन सितारे लगे हों, चमकता हुआ, बड़ा फैंसी, बड़ा नाइस, देखने में बहुत कीमती लगे, वो कहते ये है, लेकिन इसका एक मसला है, इसमें करंट नहीं है। जैसे हम बच्चों के लिए डमी खिलौने नहीं ख़रीदते, तो मैं ख़रीदूँगी उसको, हालांकि वो बड़ा खूबसूरत है, पंपी ग्लैमरी, मैं कहूँगी नहीं भाई, रंग शक्ल कुछ भी हो, मुझे वो माइक चाहिए जो बहुत प्यारी आवाज़ लेकर आए। आपकी मेरी रूह, हमारा अंदर का नफ्स, ये चीज़ है। चलिए, इतनी बात समझ आ गई। एक और मिसाल देके फिर आपको अब अंदर वाली चीज़ के तीन हिस्से लिखाती हूँ, चाहे हम एक ही आयत करें कोई बात नहीं, ये पूरे सबक की जान है ये आयत। कैसे, आप देखिए कि गिफ्ट्स मिलते हैं ईद पे, ईदी मिलती है, आमतौर पे भी गिफ्ट्स मिलते हैं। आपको एक गिफ्ट बैग मिला, बड़ा खूबसूरत, पहले लिफाफा, कोई आके आपको कहता है कि आई बॉट इट फॉर यू, आप खुश होते हैं, अच्छा इतना प्यारा, आप उसके जाने का इंतज़ार करते हैं, जल्दी जाए तो मैं खोल के देखूँ, ऐसे ही होता है ना, सामने खोलने में बुरा लगता है। चलिए, अब वो गया, आपने देखा बैग इतना प्यारा है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं फेंकूँगी, आप उसको खोलते हैं, उसके अंदर आप देखते हैं एक और खूबसूरत सी डिबिया, छोटी सी वेलवेट की, उसके ऊपर रिबन लगा हुआ है, एक फूल भी लगा हुआ है, आप कहते नहीं ये डिबिया क्या, ये तो देखो, आप वो डब्बी भी निकालते हैं, आप देखते हो उसके ऊपर एक रैपिंग पेपर चढ़ा हुआ है, आप कहते सो नाइस, मैं इसको भी नहीं खोलती, लेकिन तजस्सुस है, हाय अंदर क्या है, अंदर क्या है, बड़े प्यार से आप रैपिंग पेपर खोलते हैं, कुछ लोग बड़े सलीके से खोलते हैं, और कुछ इतने बेसब्रे होते हैं ऐसे झट से फाड़ते हैं, नहीं फड़ना चाहिए, रिसोर्सेज को ज़ाया नहीं करते, उसको रीयूज़ करें। खैर, आप आराम से बड़ी केयरफुली उसका ऊपर से रैपिंग पेपर हटाते हैं तो उसके अंदर से एक और ख़ूबसूरत डब्बी निकलती है। जो ही आप वो डब्बी खोलते हैं ना, तो उसके अंदर एक चमकती हुई खूबसूरत सी रिंग है। जब आपने खोला और उसके अंदर से ये रिंग निकल गई और जिसमें डायमंड है, जो भी है, क्या करेंगे आप? फौरन उस रिंग को निकालेंगे, उंगली में पहन लेंगे। आपने उस इतने बड़े बॉक्स, लिफाफे, रैपिंग पेपर में से क्या चूज़ किया अपने लिए? रिंग चूज़ की ना। एक आधा दिन वो रैपिंग पेपर इधर उधर रुलेगा और फिर घूम जाएगा। बहुत ही सलीकेमंद आप होंगे तो उसको संभाल देंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो भी चला जाएगा। असल चीज़ वो गिफ्ट है जो आपको मिला। इतनी बात क्लियर है? बस ये जो रिंग है ना, ये आपकी रूह है। अल्लाह ताला ने आपको मुझे इस दुनिया में भेजा। ये जो बॉडी है ना मेरी, आपकी स्किन कलर, किसी का फेयर है, किसी का डार्क है, कोई मीडियम है, कोई टैन है, हर मुल्क के लोगों का फ़र्क है। फिर किसी के चेहरे पे पिंपल्स हैं, किसी के बाल हैं, किसी के स्टेन्स हैं, कोई बिल्कुल स्टेन फ्री है। दिस इज़ जस्ट लाइक आर रैपिंग पेपर। इस दुनिया में बस इतनी कोई इसकी अहमियत है कि अब किसी ने आपको रिंग लाकर हाथ में तो नहीं पकड़ानी थी ना। अल्लाह ने आपकी मेरी रूह भेजनी थी असल में दुनिया में, लेकिन उसको इस बॉडी के रैपिंग पेपर में डाल दिया। हम सारी ज़िंदगी इस रैपिंग पेपर की खिदमत करते रहते हैं, खाते पीते, पूरी बड़ी सुपर मार्केट देखें जाकर, बड़ा मॉल देख लें, कपड़े, खाना, जूते, फिर आप वहाँ से निकले फर्नीचर शॉप, बेडशीट्स, ये सब कुछ हमारी इस बॉडी के कंफर्ट के लिए। ऐसे ही ना, मार्केटिंग की दुनिया, टीवी के एडवर्टाइजमेंट्स, पूरी दुनिया में जिसको बिजनेस कहते हैं, इवन शो बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट आवर बॉडी एंड इट्स नीड्स। कंफर्टर, गद्दा, तकिए, जॉगिंग मशीन, ब्लेंडर, ग्राइंडर, स्टेशनरीज, ये सब हमारी दुनिया के अंदर इस जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। अब अंदर की बात करते हैं। वो जो अंदर अल्लाह ने रूह डाली थी ना, वो आसमान से आई थी, ज़मीन से वजूद बना, ये आपका मेरा। इसलिए इसको मिट्टी की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, मटीरियलिस्टिक अप्रोच, मादा परस्ती, हमारा दिल खिंचता है इन चीज़ों की तरफ, कपड़े, जूते, घर, क्योंकि हम इससे जो बने हैं। लेकिन जो हमारी रूह है ना, वो आसमान से आई है। अब ज़ाहिर है कि रूह भी कुछ खाती होगी। कहते हैं ना कि व्हाट इज़ द फूड फॉर सोल, जहाँ बंदा रहता है ना उसको वहाँ के खाने अच्छे लगते हैं। ये आपसे ज़्यादा मुझे पता है, क्योंकि आप में से अक्सर हो सकता है अभी कभी पाकिस्तान से बाहर गए भी ना हो। ऐसे ही है ना, आप पंजाब में रहते हैं, आपका एक ख़ास फूड स्टाइल है ना, हम सब का, रोटी सालन, चावल, सब्ज़ी, दाल, हमें ख़ास स्टाइल से जब से पैदा हुए हैं बदल बदल के हम यही चीज़ें खा रहे हैं और हमें मज़ा ही इसमें आता है, भूख ही इससे मिटती है। इसके अपोज़िट आप चाइना में जाएं, चाइनीज़ फूड डिफरेंट होता है पाकिस्तानी से, फ़र्क होता है ना। आप शौक़ में एक या दो दिन चाइनीज़ फूड खा सकते हैं, लेकिन आपको तीसरे दिन फिर चाइनीज़ खाना मिले आप रोने लग जाएंगे। ऐसी है ना, ये अलग बात है कि हमने चाइनीज़ को भी इतना मर्चोला कर लिया कि वो खाएं तो पता नहीं मर ही जाए, लेकिन हमने उसको अपना स्टाइल दे दिया ना। हम वो फूड जो शुरू से खाते हैं ना, वो हम रोज़ खा सकते हैं। लेकिन इटालियन पिज़्ज़ा रोज़ खा सकते हैं आप? पहले दिन तो वाह, हाय, वाओ, दूसरे दिन गुड, तीसरे दिन ओके, तीसरे चौथे दिन कहेंगे अम्मी दाल नहीं पकाएंगी, है ना। तो क्या पता चला, बंदा जहाँ से आता है ना, वहाँ का फूड उसको अच्छा लगता है। जो लोग बाहर के मुल्कों से आते हैं, उनको सबसे बड़ा इधर प्रॉब्लम ही खाने का होता है, क्योंकि वो यूज़ टू नहीं होते ऐसी चीज़ों के। ये नहीं कि वो वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें खाते हैं, नहीं, बस वहाँ का आदत हो जाती है। ठीक है, अब मेरी आपकी रूह आई आसमान से, किसका फूड क्या है? कोई आसमान से चीज़ आएगी तो होगा ना। और आसमान से क्या आया? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر। सूरत कदर आती है ना, اللہ نے اس کی پہلی آیت میں کیا کہا؟ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو آسمان سے کیا آیا؟ قرآن. قرآن ہے آپ کی میری روح کی غذا. لکھیے، فوڈ فار سول از قرآن. قرآن روح کی غذا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں بائی دا وے؟ کسی نے ایک جملہ سنا ہوا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے. سنا ہوا یہ جملہ، میوزک از دی فوڈ فار سول. بڑا بگ کراس لگا دیجئے. یہ عام روح کی غذا نہیں ہے، یہ اس روح کی غذا ہو سکتی ہے جو اسپوائلڈ چائلڈ کی طرح ہو گئی. فطرت سلیم پہ رہنے والا حقیقت میں ویسا ہی جیسا کہ پیدا ہوا تھا بندہ، اس کو قرآن کی آواز سن کے مزہ آئے گا. بچے کے پاس آپ قرآن کی تلاوت چلائے نا، ایک دم سننے لگے گا. ٹھیک ہے، چلیے اتنی بات بھی کلیئر ہو گئی. تو ہمیں جس طرح اپنے جسم کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے نا، پہننے اڑنے کا، اسی طرح ہمیں اپنی روح کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرنا ہے. کسی چیز کو کھانا نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سب سے پہلے کیا ہوگی؟ کمزور ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بیمار ہوگی، اور ایک وقت آئے گا پھر وہ مر جاتی ہے. اتنی بات کلیئر ہے؟ بس یہ تین سٹیجز ہیں انسان کی روح کی. کیسے؟ فرسٹ تھنگ، نیچے سے شروع کرتے ہیں. انسان کا جسم جو ہے نا، وہ بیلنس نہیں رکھ پاتا عموماً. کرنا کیا چاہیے تھا؟ بیلنس مطلب جسم کے بھی تقاضے پورے کیجئے، کھائیں پئیں آرام کریں، تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی ہو آپ کی زندگی میں، لیکن بیلنس رکھنا چاہیے، ساتھ روح کو بھی کھانا دیں. جیسے مثلا ابھی صبح کھانا کھایا نا، تو ہمارے باڈی نے تو کھا لیا، تو ہمیں اس صبح اٹھ کے قرآن بھی پڑھنا چاہیے، تو ہماری روح کو بھی ناشتہ مل گیا. جو لوگ صبح اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اور خاص طور پہ وقت پہ نہیں پڑھتے، ذکر اذکار نہیں کرتے، تو ان کی روح جو ہے نا وہ بھوکی ہے. وہ بیچاری روزے میں آ جاتی ہے کہ اوہو، اس بندے نے صبح تو ہو گئی ہے، ابھی تک مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیا. اگر کوئی بندہ اس کو کھانے کو نہ دے تو روح بیچاری پہلے کمزور ہوگی، پھر بیمار ہوگی، اور آخر میں مر ہی جائے گی. بالکل ہی نہ پڑھے کوئی قرآن، پانچوں نمازیں چھوڑ دے. اور اسی طرح سے انسان اپنی اس روح کو اتنا زیادہ بھوکا رکھے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے جسم پر صرف ایک ہی چیز غالب ہو جائے گی، اور وہ یہ جسم کے تقاضے ہیں. یہ ہے وہ کیفیت جس کو کہا وما ابری نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء. پھر ہمارا جسم نفس امارہ کی شکل ڈھال لیتا ہے. کیسے؟ مجھے پتہ ہے مشکل باتیں ہیں سمجھنے، ہضم کریں اس کو. نہیں بھی آئیں سمجھ تو کوئی بات نہیں، جتنی سمجھ آتی ہے اتنا بھی بہت ہے. اگر ہم جسم اور روح کے تقاضوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں تو ہم ایک بیلنسڈ انسان ہوتے ہیں. اور اسلام از اے بیلنسڈ ریلیجن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کھانا کھاتا بھی ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں، میں رات کو کچھ حصہ سوتا بھی ہوں اور کچھ حصہ جاگتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، بیوی بچوں کو بھی پالتا ہوں، لیکن اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہوں. دس از دا بیلنسڈ ایٹیچیوڈ، اور یہی چاہیے. پچھلے مذاہب میں، خاص طور پہ کرسچینٹی میں، رہبانیت تھی. کیا تھا؟ نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ پہنو، خود کو ٹارچر کرو. وہ ایک الگ کہانی ہے، سورۃ حدید میں اس کا ذکر آتا ہے، کبھی آپ کے نصیب میں ہوئی تو آپ سنیں گے. کچھ لوگ اتنا زیادہ ہو گئے وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کھائیں گے، بالکل نہیں، پئیں گے بھی نہیں کچھ. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. اور ایک دوسری حد ہے، وہ کہتے ہیں ہم صرف کھائیں پئیں گے. ان دونوں کے بیچ میں بیلنسڈ کے کھائیے، حلال طیب، پہنیے اچھا ساتر ڈیسنٹ، لیکن ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی رکھیں. جب ہم روح کو کھانا دے دیتے ہیں تو روح سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے. بالکل جیسے سیچوریشن ہوتی ہے نا، کھانا کھانے کے فوراً بعد نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیوں آتی ہے؟ آج سائنس تو اس کی بڑی وجوہات دے دے گی کہ آپ کے سٹمک کو اتنی زیادہ آکسیجن چاہیے اس فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے کہ وہ باقی جسم کسی کو کہتی ہے تم سو جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو. جیسے ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے تاکہ میں کام کروں، اس لیے نیند آتی ہے ہمیں. لیکن عام طور پہ آپ دیکھیے تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، تو ہماری باڈی کو سکون مل رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ہماری روح کو سکون ملتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھیں تو نیند بڑی آتی ہے, درس میں جاتے ہیں تو نیند آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ روح کو مزہ آ رہا ہے. فلم دیکھتے ہوئے نیند کیوں نہیں آتی؟ سوال ہے آپس میں. رات تھی, نیند کم تھی, آ رہی, اچھا چلو میں کیا کروں, لو فلم لگاؤں. فلم لگائی, 3 گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلا, نیند کیوں نہیں آئی؟ کانٹوں پہ کسی کو نیند نہیں آتی. روح بے چین تھی اندر سے کہ یہ مجھے کیا دکھا رہے ہو, میرا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو, تو نیند اڑ گئی. ٹھیک ہے, تو پھر ابھی تک جو بات ہوئی اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ کہ ہمیں اپنے باڈی کے اور ہمیں اپنی روح کے, نفس کے تقاضوں کو بیلنس رکھنا ہے. ایک طرف جھکیں گے تو ایک بہت بڑا ہو جائے گا, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور دوسری طرف ہوں گے تو دوسری طرف والا بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جو بالکل کھاتے پیتے رہتے ہیں, موج مستی, ایٹ ڈرنک بی میری, یہ ایک سلوگن ہے ویسٹ میں, ایٹ کھاؤ, ڈرنک پیو اینڈ بی میری, شادی کرو. وہ کہتے ہیں فن فن فن, لائف از اے فن, موج مستی, ایسے لوگ ختم ہو جاتے ہیں, کیریئر بھی نہیں بنے گا ان کا. دوسری طرف کچھ لوگ جو دین کے نام پہ بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں, سٹبن, وہ کیا کہتے ہیں, نہیں کھاؤ, اچھے کھانے کھانا گناہ گار ہو جاؤ گے, اچھے کپڑے پہنو گے بہت بری بات ہے, اچھا گھر بناؤ گے گناہ گار ہے. وہ ایک اتنا تقویٰ کا ایک ایسا انداز لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ان کی زندگی لوگوں کو بڑی قابل رحم دکھتی ہے, اور لوگ اوفینڈیڈ فیل کرتے ہیں, بور ہونے لگتے ہیں, نہیں نہیں میں تو اتنی نیک نہیں ہو سکتی. وہ بھی ایکسٹریم پہ ہیں. بیلنس کیا ہے؟ دونوں کو لے کر چلیں. اب ہوگا کیا؟ صبح فجر کی نماز کی مثالی آپ سوچئے, ایک حدیث ہے, اپنے لفظوں میں لکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کو کوئی سوتا ہے, جیسے آپ بھی روز رات کو جب سوتی ہیں اور میں بھی سوتی ہوں, تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان آ کر ہمارے یہاں سے بال, یہ جو جگہ نا, یہ گدی کس کو کہتے ہیں, جہاں موسٹلی چٹیاں باندھی جاتی ہے, ادھر سے بال پکڑتا ہے شیطان. ریئل میں ایسا ہوتا ہے. فرمایا کہ شیطان ہمارے گدی کے بال پکڑ کر اس پہ گریں لگاتا ہے, نوٹس لگاتا ہے, 1 2 3 4, اور نوٹس لگاتے کے دوران ایک جملہ بولتا ہے, سو جا رات بڑی لمبی ہے, سو جا سو جا سو جا سو جاؤ. اچھا اب جب اس نے خوب ہمیں گریں لگائیں تو ہم ٹائٹ ہو گئے نا, اس کے ہاتھوں میں آ گئے. فرمایا فجر سے پہلے, یعنی جب صبح کا وقت ہوتا ہے, ایک بندہ اٹھتا ہے, اٹھ کے بیٹھا, اذان سنی, وضو کیا, اب جو ہی وہ اٹھا اور اس نے تھوڑا سا ذکر کیا نا, تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے, وضو کیا, نماز پڑھی, دوسری گرہ بھی کھل گئی, ذکر اذکار کرتا رہا, تیسری بھی کھل گئی. ایسا شخص سارا دن شیطان کے قبضے سے آزاد ہے. اور اس کی علامت کیا ہوگی؟ اس کا دل خوش رہے گا, اس کو سارا دن فیل ہوگا, آئی ہیو لاٹ آف برکا ان مائی ٹائم, اس کو وقت میں برکت دکھے گی, اس کا دل خوش ہوگا. اور اب سارا دن شیطان اگر اس کو بہکانے کے لیے بھی آئے گا نا, تو یہ کہے گا بھاگ جاؤ, مثلا ظہر پڑے گی, عصر بھی پڑے گا, بندہ بیچ میں اچھے اچھے کام بھی کرے گا. اس کے اپوزٹ ایک دوسری صورت اس سے بالکل اپوزٹ ہے. صبح کا وقت ہوا, فجر کے قریب آنکھ کھل گئی, الارم لگ گیا, چلے, وہ کہتا ہے اٹھو, تو شیطان کہتا ہے نا سو جا سو جا سو جا, رات بڑی لمبی, سو جا, ابھی بہت ٹائم ہے, وہ ابھی تو سب نے وضو کرنا گھر میں. وہ کہتے ہیں نہیں, میری نماز قضا ہو جائے گی. جتنا ہم اس وقت جنرس ہو جاتے ہیں نا فجر کے وقت, سارے گھر والے باتھ روم یوز کر لیں میں پھر کروں گی, کیونکہ ابھی اور سونا ہے. شیطان تھپکتا ہے. اتنے میں کیا ہوتا ہے, فجر کا وقت نکلنے لگا ہے, وہ پھر اٹھتا ہے, اوہ میری نماز جا رہی ہے. پھر شیطان, ارے نہیں نا بہت دیر ہے, پھر تم نے اسکول بھی تو جانا ہے نا, ابھی اٹھ جاؤ گی تو پھر تمہیں تو اسکول میں نیند آئے گی, وہاں جو پڑھنا ہے وہ پڑھ نہیں سکو گے. خیر قصہ مختصر, وہ سویا ہی رہتا ہے. فجر بھی گئی, سورج بھی نکل آیا, اشراق کا وقت بھی گیا, اب اپنے حساب سے اپنے اسکول کام جاب کے لیے اٹھا 8-9 بجے. فرمایا ایسا بندہ سارا دن شیطان کے شکنجے میں رہتا ہے. وہ جو نوٹس لگائی تھی نا اس کے سر میں, وہ لگی ہوئی ایسے اس کو کھینچا ہوا ہے, اس کا دل سارا دن دکھی رہے گا, پریشان رہے گا, وہ اپسٹ ہوگا, اس کے وقت میں برکت نہیں ہوگی, اور اس کو غصہ آئے گا ہر بات پہ. और ऐसा बंदा जो सुबह सोया रहे और सूरज निकल आए तो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। जी अब आप सोचिए, अगर हमारी सुबह का आगाज़ ही इस कबीरा गुना से हुआ, नमाज छोड़ना कबीरा गुना, सबीरा नहीं कबीरा, सारा दिन क्या होगा, कैसा गुजरेगा दिन। मिसाल देती हूँ, पेपर चेक कर रही हैं टीचर आपका, और एक ऐसा पेपर आ गया कि पहले सवाल के जवाब में किसी ने फिल्म की स्टोरी लिखी हुई है, गाने के बोल लिखे हुए हैं, क्या टीचर उससे अगला पेपर पढ़ेगी, फौरन उसको कॉल करेगी, ये क्या किया। तो लिखिए एक जुमला, फजर की नमाज वक्त पे पढ़िए क्योंकि ये शैतान के ख़िलाफ़ आपकी पहली जंग है जो आप जीत जाएंगे, फर्स्ट बैटल अगेंस्ट द डेविल एंड यू नीड टू बी विन, आपको जीतना है। अच्छा, अब जब इस तरह की आदत हो जाती है ना कि वो बात नहीं मानी, सोते रहे, तो शैतान बड़ा खुश होता है, देखा मैंने इसको सुलाए रखा, नफ्स मोटा हो जाता है। जोहर का वक्त आ गया, आपको रिग्रेट होता है, आप कहते हैं आज तो मैंने फजर भी नहीं पढ़ी, और सुबह उठ के अगर आप सोचते हैं ना अच्छा मैं इसको जल्दी से पढ़ लूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी का हुक्म आपको पता क्या है, अगर बिलफर्ज किसी की नमाज छूट गई और वह सोता रह गया या भूल गया, फौरन उठते ही पढ़े, पूरी पढ़ेंगे, फिर याद आने पे पढ़ लें, कहीं जगह स्टक हो गए फौरन पढ़ें। ये जो हमारे यहाँ ख्याल है ना कि फजर अगले दिन की फजर के साथ और जोहर अगले दिन की जोहर से, ये बेकार बात है, आपको क्या पता आप अगले दिन तक ज़िंदा रहेंगे भी कि नहीं। ठीक है, तो फौरन पढ़नी होती है। अब हुआ क्या कि जब आप जोहर के लिए उठने लगे तो वही शैतान जिसकी बात आपने मान ली थी वो आपके पास आएगा, जोहर क्यों पढ़ती हो, तुमने तो आज फजर ही नहीं पढ़ी थी, तो तुम्हें पता कि एक नमाज ना पढ़े तो अगली का भी फ़ायदा नहीं होता, छोड़ो कल से शुरू करना, कल फजर से पूरी शुरू करना, फिर सारी पांचों पढ़ना, वो जोहर असर मगरिब इशा सब छुड़वा देता। ये है इन नफ्स अल अम्मारतुम बिस्सू, हम जितनी शैतान की बातें मानते जाते हैं नफ्स नफ्स अम्मारा बनता जाता है, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसके माँ बाप उसकी हर बात मानने लग जाएं तो बच्चा बिगड़ जाता है। आप एक नाम लिख लीजिए नफ्स अम्मारा क्या है, ये पहली किस्म है, स्पॉइल्ड चाइल्ड, बिगड़ा हुआ बच्चा, लाडला बच्चा। और जब बच्चे लाडले हो जाते हैं ना तो फिर वो माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं, जहाँ कोई मेहमान आकर बैठे अम्मी पैसे दें, वो बाहर आए मैंने चीज़ लेनी है, ज़िद करेंगे, उनको पता होता है कि अम्मी ने इस वक्त कुछ कहना ही नहीं है, मेहमान आए, ये तो अलग बात है मेहमानों के जाने के बाद समझ आ जाएगी कि मामा करती क्या है, ऐसे ही है ना। तो जब हम नफ्स की बातें मानते रहते हैं ना, जो चाहा खा लो, जो चाहा देख लो, यानी जितने गुनाह करते जाते हैं ना तो हमारे नफ्स की पहली स्टेज शुरू हो जाती है जिसको नफ्स अम्मारा कहते हैं। ठीक है, फिर ये हमें और बुरे कामों पर डालेगा, फिर हमारा जो कोई नेकी करते थे उसमें भी दिल नहीं लगेगा। चलिए, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ द नफ्स है, मैंने तीन बतानी है आपको। अब क्या हुआ, सेकंड पे चले, उसका नाम है नफ्स लवामा। सूरत क़यामत में ये लफ्ज़ आया हुआ है, बिल्कुल आखिरी सूरत से पहली सूरत है 29वें पारे की, सेकंड लास्ट सूरा 29 जूस। नफ्स लवामा क्या है, गिल्ट, जो गुनाह करने के बाद होता है, जैसे आप कहते हैं ना मलामत करना, ये वही लफ्ज़ है। आपने फजर छोड़ दी, सोते रह गए, जो ही आप उठते हैं तो आपको क्या फील होता है, गिल्ट होता है, अफसोस होता है, ओहो मैंने नमाज छोड़ दी, बहुत बुरा किया, अल्लाह मुझे माफ़ करे, आपको अपने पर गुस्सा आता है, आप कहते हैं आप इसके बाद नहीं छोड़ूंगी। ये जो कैफियत है ना, इसको नफ्से लवामा कहते हैं, यानी कोई बुरा काम किया उस वक़्त तो कर लिया, बस हम मिसाल दे रही हैं, चले एक नमाज की बात तो हो रही है, और भी ज़िंदगी की मिसालें हैं। आप अपने घर वालों को बताए बगैर अपनी दोस्त के साथ कहीं चले गए चोरी छुपे, अम्मी को पता भी नहीं चलेगा, अम्मी को क्या, मैं आज अपनी दोस्त के घर चली जाऊँ, क्यों क्या करना है, मिल के पढ़ेंगे, अच्छा ठीक है चली जाओ जल्दी आ जाना। अब दोस्त के घर गए, पढ़ना पढ़ाना क्या था, फिल्म लगा के बैठ गए, जो ही आप वो फिल्म देख रही होंगी आपके अंदर एक खौफ सा होगा कि मैं गलत कर रही हूँ, मैंने अपनी अम्मी को धोखा दिया, बाज़ार चली गई, होटल में किसी के साथ चले गए चाय पीने। वो जो कैफियत खौफ की होती है ना गलत काम करते हुए, ये नफ्से लवामा है। जब भी ये कैफियत आए ना फौरन गुनाह को छोड़ दें, और अगर आप नफ्से लवामा के मना करने पे, यानी आप कहें कि नफ्से लवामा आपकी अम्मी है जो आपको बुराई से रोकती हैं, आपकी बड़ी बहन है जो आपको बुरे बातों पे रोकती हैं, कोई भी हो सकता है, अगर आप रुक जाते हैं वहीं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अब मैं ये काम आज के बाद कभी नहीं करूँगी, आज कर लिया आज के बाद नहीं करूँगी, तो इसके बाद एक तीसरा नफ्स बनता है जिसको नफ्से मुतमईना कहते हैं। सूरत फजर की आखिरी आयते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजी इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, ए नफ्से मुतमईना चल अपने रब की तरफ इस हाल में कि वो तुझसे राजी और तू उससे राजी, जन्नत में दाखिल हो जा और मेरे बंदों में दाखिल हो जा। अब इसको ज़रा सा सोचिए, ये क्लाइमेक्स है आपकी स्टोरी का। नफ्से मुतमईना जब हो जाती है बंदे की, तो मौत की सूरत में अल्लाह उसको पकड़ लेता है। वही रिंग याद कर लीजिए, सारी ज़िंदगी हम इस जिस्म के रैपिंग पेपर में खेलते रहे कूदते रहे, कभी अच्छे कभी, लेकिन हमने बचाया। और अच्छे लोग चीज़ों को केयरफुली कैसे रखते हैं, उसको वापस पैकिंग में ही संभालते हैं, और जो बेकार होते हैं वो ऐसे ही रोलते हैं अपनी चीज़ें, ज़ाया करते हैं, ख़राब हो जाएंगी ना। मौत की सूरत में आपकी मेरी रूह जब नफ्से मुतमईना होगी ना, अल्लाह इसको पकड़ेगा और उसको फरिश्तों को कहेगा, ये देखो ये बंदा मेरे पास कितना पाक साफ होके आया है। तो मेरा आपका फिर गोल क्या है? नफ्स, रूह, सोल, कोई भी लफ्ज़ बोल दीजिए, तीनों एक ही हैं, इसकी हिफाजत करनी है, गुनाहों से बचाना है, नाफरमानियों से बचाना है, शैतान के वार से बचाना है, सोसाइटी में जो बुरी चीज़ें हो रही हैं उससे बचाना है, बैड कंपनी से बचाना है। कोई ऐसी दोस्त सहेली जिसके पास बैठकर गलत चीज़ देखने को सुनने को और बोलने को दिल करे, उससे अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी आप में इतनी रेजिस्टेंस नहीं है कि आप उसको ठीक कर सकें। आप उससे अपने आप को अलग करें और बल्कि उसको भी गाइड करें। अगर आप ऐसे हो जाएंगे तो आपका मेरा ठिकाना क्या होगा? फदखली जन्नत, जन्नत होगी। चले नहीं कर सके, अब क्या हुआ? आपने गुनाह भी नहीं छोड़े, हराम भी नहीं छोड़ा, और एक से एक चीज़ों में आप इंडल्ज होते जाएंगे। बिलाखिर मौत का वक्त आएगा, फरिश्ते उसकी रूह निकाल लेंगे। वो रूह जो है ना, जो निकलती है जिस्म से, बड़ी गुनाहगार है, फाजिर काफिर, सारी ज़िंदगी नफ्स की बातें मानी, ड्रिंकिंग गैम्बलिंग अडल्ट्री गैंग बन गया चोरी, ऐसे शख्स की जब मौत का वक्त आता है ना, तो इतने प्यार से उसकी रूह नहीं निकलती जैसे अभी हमने ये रिंग वाली मिसाल देखी है। क्योंकि मोमिन की रूह बड़े प्यार से निकलती है, जैसे खुशबू की शीशी खुली रह जाए तो खुशबू उड़ जाती है और वह नीचे खाली बोत रह जाता बॉटल। मोमिन की रूह इतने प्यार से निकल जाती है कि उसकी डेड बॉडी हमारे हाथ में होती है, लेकिन उसकी रूह अल्लाह आसमानों पर ले जाते हैं, फरिश्ते उसको बड़े प्यार से ऊपर उठाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, जर्नी ऑफ सोल, फिर कभी सुनिएगा। लेकिन इसके बरस जिसने दुनिया में गुनाह और ज्यादती की, उसकी मौत बड़ी सख्त होती है। आपने फरमाया कि मलमल का दुपट्टा गीला करो और कांटों वाली शाख पे डाल दो, फिर उस दुपट्टे को खींचो तो क्या होगा? वो दुपट्टा सारा उधड़ जाएगा, फट जाएगा। इस तरह बुरे काम करने वाले की जब जान निकलती है ना, बड़ी तकलीफ़ होती है। वो है नफ्से अम्मारा, और उसकी रूह को निकाल कर पकड़ के नीचे जहन्नुम के तन्नूर में फेंक दिया जाएगा। मोमिन की रूह किधर ले गए? ऊपर। उसका बहुत प्यारा इस्तकबाल आता है, ततलक्का हुमुल मलाइका, फरिश्ते हाथों हाथ लेते हैं, कमन वी आर वेटिंग फॉर यू। जैसे दुल्हन आती है तो घर वाले उसका वेलकम करते हैं, खुशी खुशी बुलाते हैं। सारी ज़िंदगी अगर आप अच्छे काम करके जाएंगे ना, तो आपकी मौत बड़ी खूबसूरत होगी। लोग वॉर्म वेलकम देने को, आसमानों के सारे फरिश्ते आपकी रूह को खड़े होंगे लेने के लिए। पहला दरवाज़ा खुलेगा, दूसरा खुलेगा, हत्ता के सातवें दरवाजे से खुलकर जब रूह जाती है तो अल्लाह के आगे सजदे में चली जाती है, खुश होती है, इंजॉय कर रही होती है। उसको ऐसे लगता है कि मैं किसी फन फ्लैक्स में आई हुई हूँ। इसके बरक्स अगर बुरे काम करेंगे तो मौत भी बुरी, और मौत के बाद तो कब्र, हशर, बरज़ख और आखिर में जहन्नम। तो फिर आपने मैंने क्या करना है? आज क्या सीखा हमने? अपने नफ्स को गुनाहों से बचाना। वमा उबर्री नफ्सी इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सुई इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। मैं अपने नफ्स को बेगुनाह नहीं कहता, ये तो हमेशा बुराई का हुक्म देता है, हाँ मगर जिस पे मेरा रब रहम कर दे, मेरा रब बख्शने वाला है, यानी रब तो बख्शने वाला और मेहरबान है। तो आपका मेरा अपने ऊपर एहसान क्या है? बोलिए, अपने आप को गुनाहों से बचाना है। किसी को नहीं पता चलेगा, आपकी अम्मी तो वैसे ही बड़ी भोली हैं, बड़ी बाजी को भी नहीं पता लगेगा, छोटी बहन को तो वैसे ही कुछ नहीं पता, अब्बू को भी नहीं पता चलेगा, भाई को भी नहीं। लेकिन कब तक? जब तक आप अभी शुरू में हैं। आप जितना किसी बुराई में एक्सपर्ट और यूज्ड टू होती जाएंगी ना, सबको पता लग जाएगा। ये नहीं हो सकता कि कोई बार बार गुनाह करे और उसके इर्द गिर्द वालों को पता ना चले। अल्लाह के नबी ने कहा, घर के पर्दों में छुप के भी आप कोई गुनाह करेंगे ना तो अल्लाह आपको रुस्वा कर देगा। तो हमारा अपने ऊपर ये हक है। खुलासा कर देती हूँ आज जो बात सीखी है उसका। हमारे जिस्म के दो हिस्से हैं, एक मटीरियलिस्टिक पार्ट है और एक इनविजिबल पार्ट है। एक मादी वजूद है और एक रूहानी वजूद है। मादी वजूद का दिल चाहता है खाओ पियो मौज करो, क्योंकि ये मिट्टी से पैदा हुआ है, इसका दिल इसमें लगता है। जबकि हमारे नफसानी रूहानी वजूद का तकाजा क्या है? कि नेक बनो, कुरान सुनो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से बातें करो। अब आपके ऊपर है, अगर आप ज़्यादा मादी वजूद के पीछे ही लगे रहते हैं तो एक वक्त आएगा कि आपका नफ्स मोटा हो जाएगा और वो फिर आपको हमेशा बुराई की दावत देगा। जैसे दोस्ती कब होती है? जब आप किसी की बात बार बार मानते हैं। एक बात मान ली, दूसरी भी मानी, वो कह गया आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। जब हम नेकियां करते हैं ना तो फरिश्ते से हमारी दोस्ती होती है, और जब हम गुनाह करते हैं ना तो शैतान से हमारी दोस्ती होती है। और अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि जिसकी दोस्ती शैतान से हो जाए, शैतान उसको जलील कर देता है और वो बड़ा बुरा दोस्त होता है। तो जब हम गुनाहों से बचाएंगे खुद को तो अल्लाह ताला हमारी अच्छे मामले करेगा। और फिर क्या सीखा? कि जब हम गुनाह करते हैं तो उसके बाद गिल्ट होता है, दिल पे बोझ होता है, ये नफ्से लवामा की कैफियत है, मलामत करता है, मैं क्यों किया, शर्म करो, बहुत बुरी बात है, अम्मी अब्बू को धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते। ठीक है, अगर आप इसको सुन लेते हैं तो फिर तीसरी कैफियत है नफ्से मुतमईना। ये है जो अल्टीमेट गोल है आपका मेरा। आप कुरान क्यों पढ़ें? क्योंकि आप मुतमईन होंगे, यू विल बी अ पीसफुल पर्सन, खुश, रिलैक्स्ड। अल्लाह ताला आपको मुझे नफ्से मुतमईना बना दें। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।